ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय। संजय उवाच। संजय बोले, इस प्रकार दया से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ये वचन बोले। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और ना ही कीर्ति को करने वाला ही है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ता। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो आज से गीता का दूसरा अध्याय। अब तक हमने देखा कि अर्जुन की क्या अवस्था है, दुखी है, उदास है, पीड़ा में है, दर्द में है, रैशनलाइजेशन कर रहा है और लास्ट में क्या कर दिया उसने, रथ के पीछे जाकर बैठ गया और कहा कि ये युद्ध मैं नहीं कर सकता। तो वो था पहला अध्याय। आज से दूसरा अध्याय चालू हो रहा है। संजय ने कहा, उस समय दया से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहे। हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि यह ना तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना स्वर्ग को देने वाला है और ना ही कीर्ति को प्राप्त कराने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझे यह उचित नहीं जान पड़ता। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो आज हम इन तीन श्लोक जो है उन पर चर्चा करेंगे। 1896 मनोविज्ञान के इतिहास में सबसे पहली बार ऑस्ट्रिया के न्यूरोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड ने पहली बार एक शब्द का प्रयोग किया था जिसको कहा गया साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषण। उसने पाया कि मन के मनुष्य के का मन दो तलों पर काम करता है, एक चेतन मन, एक अचेतन मन, एक कॉन्शियस माइंड, एक अनकॉन्शियस माइंड। और उसकी ये समझ में आया कि बहुत सी बीमारियां जो है वो अनकॉन्शियस माइंड से निकल रही है। तो उसने बहुत सारे प्रयोग किए मरीजों पर, लोगों पर, पेशेंट्स पर, और पाया कि जो डिप्रेशन है, जो उदासी है, जो न्यूरोसिस है, एंजाइटी है, फियर है, फोबिया है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स है, बहुत सारी मन की बीमारी जो है वो अचेतन से निकल रही है। और इस अचेतन तक पहुंचने का एक मार्ग, एक थेरेपी, एक इलाज उसने जो ढूंढा वो था मनोविश्लेषण अर्थात साइको एनालिसिस, जहां पर पेशेंट को एक कोच पर लिटाया जाता है, उसके पीछे मनोविश्लेषक खड़ा होता है। हफ्ते में ऐसे 3 या 4 सेशन होते हैं, एक सेशन लगभग 50 मिनट का, और पेशेंट को कहा जाता है, बताओ तुमको क्या क्या लगता है, एक तरह से हिप्नोसिस जैसा, और वो बोलने लगता है। उसको एक दूसरा व्यक्ति है, सेकंड पर्सन, वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन के विषय में उसकी क्या फीलिंग्स है, नफरत है, घृणा है, प्रेम है, इन्फैचुएशन है, क्या है, मोह है, वो सब कुछ बोलने को कहा जाता है। फ्री फैंटेसीज, फ्री टॉक, उसको इतना शांत कर देता है, किया जाता है कि वो बोलने लगता है और बोलने लगता है। और जो एनालिस्ट होता है, थर्ड पर्सन, वो फिर इंटरप्रेट करता है कि इसके मन में कौन सी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है अनकॉन्शियस में, क्योंकि जो चेतन में हो रहा है वो अनकॉन्शियस में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, जो संघर्ष हो रहा है, अचेतन में जो संग्राम चल रहा है, जो एक अविरत समर चालू है, उसका स्रोत अचेतन है, अनकॉन्शियस है, वहीं पर कुछ है। और उसका कहना था कि जो कुछ अभिव्यक्ति कर रहा है वो जरूर उसके बचपन में कुछ हुआ है, उससे संबंधित है, बचपन का कोई ट्रॉमा है, बचपन में किसी ने सताया है, कोई अब्यूज है, कोई एक ऐसा गहरा प्रभाव या चोट लगी है, जैसे उदाहरण के तौर पर टेड बंदी नाम का व्यक्ति था, 1970s में सीरियल किलर था अमेरिका में, 70s में उसने कितनी सारी यंग फीमेल्स का खून कर दिया बिना कोई कारण के, अलग अलग रीति से फंसाया और मार दिया और मार दिया और मार दिया, सीरियल किलर, साइको। यहां साइको एनालिसिस से पता चला, भले वो ना मानना, उसने नहीं माना, परंतु उसका किसी स्त्री से प्रेम था जिसने उसे छोड़ दिया था, उसके बदले के रूप में उसने कितनी औरतों को मार दिया टेड बंदी ने। ऐसे बहुत सारे साइकोपैथ, एंटी सोशल पर्सनैलिटीज हुए हैं कि जिन्होंने सीरियल किलिंग की, बिना किसी कारण के बेरहमी से पकड़ पकड़ कर लोगों को मारा, कोई कारण नहीं, कारण अचेतन में है, कारण साइको एनालिसिस से पता चलता है। तो साइको एनालिसिस वो थेरेपी है जिसमें ट्रांसफरेंस होता है। ये शब्द पहली बार जर्मन में सिगमंड फ्राइड ने पहली बार इजाद किए इस शब्द का, ट्रांसफरेंस, जहां पर एक व्यक्ति लेटा हुआ है बेड पर, थर्ड पर्सन पीछे खड़ा है और फर्स्ट पर्सन उसकी सेकंड पर्सन के विषय में क्या फीलिंग है वो बोलने लगता है, जैसे नार्को टेस्ट में किया जाता है, सच बोलने लगता है, क्योंकि जो कुछ बोलने लगता है, जो कि स्लिप ऑफ टंग होता है, वो अचानक नहीं होता है, वो अचेतन से आ रहा है। और फिर ये एनालिस्ट जो है साइको एनालिस्ट, मनोविश्लेषक, थर्ड पर्सन, डॉक्टर, वो उसके ऊपर से इंटरप्रेट करता है कि अंदर इस पेशेंट के मन में कौन सा द्वंद चल रहा है, क्यों बार बार दुखी होता है, क्यों बार बार उदास होता है, क्यों बार बार आंसू आते हैं, क्यों बार बार लैमेंटेशन शोक युक्त हो जाता है, क्यों बार बार इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, हीनता की भावना कहां से जन्म ले रही है, क्यों बार बार व्यक्ति डिफेंसिव हो जाता है, क्यों बार बार कहां सप्रेशन हो रहा है, कहां रिप्रेशन हो रहा है, कहां प्रोजेक्शन हो रहा है, कहां डिनायल हो रहा है, व्यक्ति डिनाय करता है, नहीं नहीं मैंने तो किया ही नहीं, कर वो रहा है पर कहता है मैंने कुछ नहीं किया, ये हो क्यों रहा है। सबका कारण अचेतन में है, चाइल्डहुड में, ऐसा सिगमंड फ्राइड ने ये सिद्धांत, बाद में उसके शिष्य, उसके डिसाइपल, उसके स्टूडेंट अल्फ्रेड एल्डर और कार्ल गुस्टाव जंग, उन्होंने उस पर काम किया और उस थियोरी को आगे बढ़ाया। यहां पर शायद द्वापर युग का ये सबसे पहला साइको एनालिसिस है। भगवत गीता चैप्टर 2, तम तथा कृपया विष्ठ तथा कृपया विष्ठम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विशदंति मिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। अर्जुन, यहां पर कृपया विष्ठम, कृपया अर्थात दया से भर गया है। अश्रु पूर्ण हो गया है, कुलेक्षणम अर्थात लैमेंटेशन अर्थात शोक से पीड़ित है। विशिदंत मिदम वाक्यम, और ऐसे शोक युक्त होकर उसने मधुसूदन से ये वाक्य कहे। उसका हृदय कृपया विष्ठम अर्थात दया से भर गया है, आंसुओं से भर गए आंखें और विषाद शोक से भर गया है। अर्जुन लेटा हुआ है टेबल पर, सेशन चल रहा है साइको एनालिसिस का। ये क्यों हुआ? चेतन पर जो हो रहा है जरूर गहराई में कुछ और है। अब तक अर्जुन ने बहुत सारी बातें कही है, अब तक कहा है मैं कैसे मरूं, इससे तो अच्छा है मैं मर जाऊं। अब तक सैडिस्ट था, सैडिस्ट अर्थात जो दूसरों को मारने में सुखी होता है। अभी अचानक मैसोकिज्म आ गया है, वो कहता है मैं ही मर जाऊं तो अच्छा है। वो कहता है मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे कीर्ति नहीं चाहिए। वो कहता है मुझे इनको मारकर क्या सुख मिलेगा, मेरे पितरों का क्या होगा, मेरे संतति का क्या होगा, वर्ण संकर हो जाएगा, क्रॉस ब्रीडिंग होगा, हाइब्रिड पूरी कुल में पाप फैल जाएगा। ये सारी बातें उसने अब तक कही है, और ये कहकर ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही धार्मिक चित्त का व्यक्ति है। वो ऐसा लग रहा है कि उसका हृदय करुणा विष्ठम दया से भर गया है। ये पेशेंट है और ये इसके सिम्टम्स है। अब डॉक्टर क्या करेगा ऐसे पेशेंट को पाकर? विशदंति मिदम वाक्यम, ऐसा शोक युक्त हो गया है, वो दुखी हो गया है, आंखों में आंसू आ रहे हैं। एक तरफ से लग रहा है कितना अच्छा कर रहा है, बिल्कुल अच्छा कर रहा है, क्योंकि युद्ध नहीं चाहता है। परंतु धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ये जो युद्ध है, अर्जुन केवल एक यहां पर रूपक है। ऐसा हमने कई बार कहा है, शायद ही कोई युद्ध हुआ होगा, कोई ऐसा अर्जुन हुआ होगा, और कैसा श्री कृष्ण जिसको द्वापर में बिठाया है। परंतु ये उस द्वापर युग के समाज को दर्शाता है कि तब भी व्यक्ति में इसी तरह के मनोविकृतियां थी कि व्यक्ति यहां पर क्या कर रहा है, उसका हृदय दया से भरा है, परंतु यह सच्ची दया नहीं है, यह झूठी दया है, यह दिखावा है। ये जो आंसू आ रहे हैं, अब तक वो मारना चाहता था परंतु अभी आंसू से भर गया है। अश्रुपूर्ण कुलक्षयम, ऐसी उसकी दशा हो गई है, और फिर वो ये वाक्य कह रहा है। तो टीचर के पास, डॉक्टर के पास तो दो पर्याय है, या तो उसको समझाए कि भाई ये दया का समय नहीं है, या रोने का समय नहीं है, ये तुम क्यों शोक युक्त कर रहे हो। परंतु यहां पर जो आघात किया है ट्रीटमेंट देने वाले ने, उसके अहंकार पर किया है, क्योंकि ये जो अर्जुन कह रहा है उसके गहराई में उसका अहंकार छिपा हुआ है। दो शब्द कहे गए हैं, एक तो करुणा और दूसरा दया। अर्जुन को जो हो रहा है वो दया है, करुणा नहीं, क्योंकि बुद्धिमान विचारक कहते हैं कि करुणा जो है वो मनस्थिति जन्य है, और दया जो है वो परिस्थिति जन्य है। जब व्यक्ति किसी पर दया करता है, कोई भिखारी मिला उसको कुछ देता है, वास्तव में अपने अहंकार की वो तृप्ति कर रहा है कि मैंने दिया। और जो कारुणिक है, जो करुणा वाले है, उनके पास कोई आए या ना आए इससे उनको कोई लेना देना नहीं, वो परम दयालु है। परंतु दया वास्तव में अहंकार की ही पूर्ति है एक रीति से। हम यदि किसी को देते ही रहे देते ही रहे देते ही रहे, वास्तव में उसके साथ सबसे बड़ा अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि हम उसको क्या कर रहे हैं, उस व्यक्ति को उसको अपने अधीन बना रहे हैं, वो डिपेंडेंट भी बना रहे हैं, उसके अपने अधीन बना रहे हैं। इसलिए यहां अर्जुन जो कह रहा है कृपया विष्ठम, कृपया अर्थात दया से भरा हुआ है, परंतु ये उसकी झूठी दया है। ऐसा उसके हृदय में कहां से, अचानक थोड़ी ना उसको युद्ध के मैदान में लाया गया और कहा मारो, और फिर वो कहता है मैं कैसे मारू, ये मेरे गुरुदेव है, ये मेरे पिता, ये है बड़े है, ये मेरे भाई है। ये अचानक नहीं हुआ है, उसको अचानक ऊपर से अवतरित नहीं हुआ है युद्ध के मैदान में, उसने खुद ही आया है, वो खुद ही मारना चाहता था और अचानक अभी उसकी भाषा बदल गई है। इसलिए भगवान वाच कृतस्त्वा कश्मलम इदम विषयम समुपस्थितम, क्या कहा कि ये तुझे इस समय कहां से सूझा। ट्रीटमेंट देने वाला देखो कैसी भाषा बोल रहा है, ये नहीं कह रहा है कि तुम ये तुम्हारी करुणा है या दया है, ये नहीं बता रहा है, ये अच्छा नहीं है तुम्हारा कंपैशन, ये शोक मत करो, ये नहीं, सीधा क्योंकि अहंकार का ही विकृत रूप वो दया है उसकी, वो जो आंसू उसके हृदय आंखों से निकल रहे हैं, वो जो शोक रहित हो रहा है उसके पीछे बैठा उसका मोह है, ऊपर से रैशनलाइजेशन कर रहा है और साथ में सेल्फ विक्टिमाइजेशन भी कर रहा है कि मैं अपने आप को ही मार दूं तो अच्छा है, ये मुझे मार दे तो अच्छा है, अभी तक मारना चाहता था, होमिसाइड, अभी सुसाइड टेंडेंसी में चेंज हुआ है, सैडिस्टिक से मैसोचिस्टिक हो गया है। तो यहां पर सीधा उसके अहंकार पर चोट की है। कृतस्त्वा, कहां से आया ये, कहां से लाया तुमने ये, कायरता दुर्बलता, कश्मल मिदम, कश्मल अर्थात ये मल कहां से आ गया, ये गंदगी कहां से आ गई, ये विकार कहां से आ गया, इन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, जबकि वो भाषा कितनी अच्छी बोल रहा है, आंसू आ रहे हैं, शोक है, परंतु क्या कह रहा है, विषम में, इस विषम समय में समो उपस्थितम, अनार्य है ये, ये आर्य के लायक नहीं है, तुम आर्य हो, उसे सीधा वो क्षत्रिय है उसे याद दिला रहा है, हे पार्थ तुम किसके पुत्र हो, प्रथा उसकी माँ, प्रथा के पुत्र पार्थ, अर्थात तुम क्षत्रिय हो, अपना धर्म छोड़कर तुम भागने की भाषा कर रहे हो, अपना धर्म छोड़कर, तुम्हारी आंखों में आंसू है तो अपना धर्म छोड़कर, शूद्रम हृदय दौर्बल्यम, तुम्हारा हृदय दुर्बल हो रहा है अर्जुन, तू इस समय विषय में समुपस्थितम अनार्य जुष्टम, ये अनार्यों की भाषा है, आर्य अर्थात मूल्यों में आता है आर्य और अनार्य, आर्य अर्थात सुधरे हुए, आर्य अर्थात श्रेष्ठ, आर्य अर्थात सुशील, आर्य अर्थात कुलीन, आर्य अर्थात महान, भारतवर्ष को आर्यव्रत कहा जाता है, आर्यव्रत, आर्य अर्थात वह जाति जो सबसे ऊंची थी, सबसे कुलीन थी, यहां से फिर सारे आर्य भारत विश्व भर में फैल गए, सबसे पहले जो थे सिंधु घाटी सभ्यता में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो आर्य थे, किसी का कुछ थियोरी से जो कहती है आर्य बाहर से आए थे, परंतु नहीं, आर्य यहां थे और हमें पता है वो आर्य हम ही थे, क्योंकि देवी देवता धर्म वाले ही वास्तव में आर्य थे, और यही फिर वापस में सब जगह फैले, विशेष रूप से ईरान में, इसके लिए ईरानी अपने आप को आर्य कहते हैं, नाम भी ईरान वहां से ही निकला है, आर्य, इंडो ईरानियन, तो तुम आर्य हो, श्रेष्ठ हो, कुलीन हो, सुशील हो, और भाषा कौन सी कर रहे हो, भागने की, दुख की, शोक की, विलाप की, संताप की, दर्द की, कृतस्त्वा, कहां से ये गंदगी तुम्हें प्राप्त हुई है, कश्ममलमिदम विषमे, इस विषम समय में, ये तो अकीर्ति कारक है, इससे तुम्हारी अकीर्ति होगी, अस्वर्ग मकीर्ति करम अर्जुनम, हे अर्जुन तुम्हारी इससे अकीर्ति होगी अगर तुम ऐसा सोचते हो तो, क्लेब्लियम अर्थात ये क्या है, नपुंसकता है तुम्हारी, तुम्हें शोभा नहीं, ये उचित नहीं जान पड़ती है। परंतप हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग दे, शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्वक्त्वा वोष्ठितम, और त्याग कर उत्थिष्टम। परंतप, हे परंतप, हे शत्रु को मारने वाले, हे शत्रु को परास्त करने वाले, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग दे। तो अर्जुन को तीन रोग है। सबसे पहला झूठी दया, तीसरा आंखों में आंसू, और तीसरा शोक। और उसके उत्तर में क्या कहा गया कि तुम अनार्य हो, ये तुम्हारी हृदय की दुर्बलता है, और ये नपुंसकता है, इम्पोटेंसी, स्पिरिचुअल इम्पोटेंसी, ये उत्तर दिए गए। बहुत ही कड़े शब्दों का प्रयोग किया है साइको एनालिस्ट ने, क्योंकि साइको एनालिस्ट जो कर रहा है भगवान, उसने जान लिया कि इसके मन में, चेतन में कुछ और हो रहा है, सबकॉन्शियस में कॉन्फ्लिक्ट कुछ और चल रही है, उसको ताड़ लिया। और उसके आधार से, क्योंकि बीमारी का स्रोत अहंकार था, उसके अहंकार को चोट हो रही है कहीं ना कहीं बहुत गहरे में, और वो बाहर से ऐसा दिखा रहा है, रैशनलाइज कर रहा है, मोह है अहंकार से भी गहरे में कहीं ना कहीं। तो तीन बीमारियां यहां पर है। सबसे पहली बताई झूठी दया, दूसरी बीमारी आंखों में आंसू, तीसरी बीमारी लैमेंटेशन शोक। परंतु ये तीनों ही क्या है, हृदय दुर्बलम, हृदय की दुर्बलता है, आर्यों के कार्य नहीं है ये। अगर हम ये सोचे कि ये जो युद्ध है ये जीवन का संग्राम है, और अर्जुन आत्मा है, श्री कृष्ण यहां परमात्मा है, आत्मा भाग जाना चाहती है इस जीवन के युद्ध से क्योंकि संघर्ष बहुत है, या ये समझ लो ये आत्मा ब्राह्मण आत्मा है, ये ब्राह्मण जीवन है, या जीवन है जिसमें संघर्ष हो रहा है, और वो कह रहा है कि नहीं नहीं मुझे दया आ रही है, मैं नहीं करूंगा ये युद्ध, नहीं नहीं मेरी आंखों में आंसू है, नहीं। और उसे भगवान क्या कह रहे हैं, ये तुम्हारी हृदय दौर्बल्यम, हृदय की तुम्हारी दुर्बलता है, नपुंसकता है, ये तुम्हारे अनार्य के कर है, कर्म है, ये तुम स्वर्ग में जाने लायक नहीं हो, तुम स्वर्ग में नहीं आ सकते अगर इस स्वर्ग, इस लड़ाई से यदि तुम पलायन कर जाओ तो। और आगे फिर यहां से वास्तव गीता भी चालू हो रही है। ये पहले तीन श्लोक, पहला श्लोक अर्जुन, और फिर भगवान बोल रहे हैं, और फिर अर्जुन थोड़ा बोलता है, और फिर वास्तव में सारा कुछ यहां से अब चालू होगा। तो प्रश्न है, ये जो तीन बीमारियां यहां बताई है, कृपया विष्टम अश्रुपूर्णम कुलक्षेमम विशदंति मिदम वाक्यम उवाच मधुसूदनम। वो कह रहा है मधुसूदन, मधु नाम के दैत्य को मारने वाले, हे मधुसूदन, मेरे हृदय में, मेरे मन में जो अज्ञान का मधु बैठा है, अब उसका संहार करो। भगवान को मधुसूदन कहा है, मधु नाम के दैत्य को मारने वाला, यह मधु अर्थात मिसअंडरस्टैंडिंग, यह मधु अर्थात झूठी दया, यह मधु अर्थात ये जो शोक है, ये जो अज्ञान है, ये जो पीड़ा है, ये जो दर्द है, ये जो हृदय दुर्बलता आ गई है, ये जो नपुंसकता आ गई है, ये जो अनार्यों से कार्य कर रहा है, ये जो असुशीलता आ गई है। का पुरुष जहां व्यक्ति बन रहा है, कातरता जो हृदय में समा गई है, ये जो बेचैनी उत्पन्न हुई है, इस बेचैनी, ये सब मधु है, इसका तुम नाश करो। तो प्रश्न है, ब्राह्मण जीवन में ब्राह्मणों को दुख क्यों है? ब्राह्मणों को, उनको जो भगवान को जानते हैं, उनको जिन्होंने भगवान को पाया है, उनको जो ब्राह्मण जीवन जी रहे, वो जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो जो अमृत वेला भगवान से मिलन मनाते हैं, भगवान के महावाक्य सुनते, सारे दिन भर श्रीमद का पालन करते हैं, फिर भी ब्रह्मा भोजन खाते हैं, ब्राह्मण परिवार में रहते, अटूट अटल स्नेह जिनका भगवान से है आज के वरदान से, ऐसे ब्राह्मण आत्मा भी कभी कभी क्या हो जाती है, विषिदंत मिदम, ऐसा मधु उनको घेर लेता है, पकड़ लेता है, घोर अंधकार, अभी भी कहा था बाबा ने, खुद सुस्त हो जाते, माया खुद और सुस्त बना देती है, उनके दुख का, शोक का, झूठी दया का, खुद ही पर झूठी दया करते, मैं बीमार, मुझ पर दया करो, हॉस्पिटल में हूं तो मुझे देखने आओ, मोई को जो पूछे तुम्हें दुख क्या है, आंसू क्यों आ रहे हैं, आंसू तो यहां ही भरे पड़े हैं, जैसे स्टॉक बटन दबाने की देरी है, और वो हम चाहते हैं दूसरा दबाए ताकि हम उस पर दोषारोपण कर सके कि तुम कारण हो, मैं नहीं, तुम, उसमें मजा है, उसमें बहुत सुखद अनुभव होता है। अर्जुन कहना चाहता है अंदर से तो भयभीत है परंतु कहना चाहता है कि नहीं, मैं तो बातें तो आ रही है जैसी कर रहा हूं, मैं नहीं चाहता इनको क्यों मारूं, मैं, ये मेरे भाई है, इनको मार के मुझे सुख मिलेगा, इनको मार के मैं राज्य प्राप्त करूं, मुझे नहीं चाहिए राज्य, उससे तो मैं जाकर सन्यासी बन जाता हूं। ये भाषा झूठी है, आडंबर है, ढोंग है, अंदर में तो चाहता है परंतु ऊपर से दिखावा कुछ कर रहा है, और पर यह भी नहीं कहना चाहता कि तुम कायर हो, कोई ये भी नहीं कहे कि देखो तुम रो देते हो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा हम नहीं चाहते, हम ये चाहते कि तुमने रुलाया, इसमें रस है, स्वाद है दूसरों पर दोषारोपण करने में, कि मेरा जो दुख है, मेरे जीवन में जो दर्द है, इसका कारण मैं नहीं, तुम, तुम्हें खुद को ठीक करना पड़ेगा, तुम माफी मांगो, तुम अपने आप को सुधारो, तुम मेरी बात को समझो, तुम नहीं समझ रहे हो इसके लिए मैं दुखी हूं, उंगली उधर है, क्यों, क्योंकि अपने आप को छुपाना चाहती है आत्मा, तम तथा कृपया विष्टम, दया हो रही है, ऊपर से तो ठीक लग रहा है परंतु खुद ही के प्रति दया, सेल्फ विक्टिमाइजेशन हो रहा है यहां, और जितना दूसरा, जितना व्यक्ति ऐसा खुद करता है उतना ही दूसरा और अड़ल हो जाता है अपनी धारणाओं में, और ही बमाफी, और ही नहीं करेगा तुमको, तुम्हारे सामने अपने गुनाह को कबूल, या तुम जो चाहते हो वो और दुख देगा, और तुम उस छोटे दुख को इतना बढ़ाओगे, इसी को सेल्फ विक्टिमाइजेशन कहा जाता है, वही ये भी यहीं पे वही कर रहा है, इसके लिए यहां प्रॉब्लम दया का है ही नहीं, अर्जुन वो उसको ये नहीं समझा रहा है कि ये दया है या कृपा करुणा है, इस चक्कर में ही नहीं पड़ रहा है टीचर, क्योंकि टीचर को पता है ये जो ऊपर जो दिखा रहा है ना, ये चेतन में जो हो रहा है उसके अचेतन में कुछ और हो रहा है, साइको एनालिस्ट ने समझ लिया है कि अचेतन की बीमारी अहंकार है, अचेतन की बीमारी मोह है, ये तो ऊपर से कह रहा है पितरों का क्या होगा, संतति का क्या होगा, स्त्रियां कुलुषित हो जाएगी, इसके लिए आक्रमण कहां किया, ये है सच्चा टीचर, द फर्स्ट साइको एनालिस्ट, उसने आक्रमण कहां किया, कृतस्त्वा कश्मलमिदं विषये, ये मल कहां से लाया तुमने, वास्तव में देखा जाए तो ऐसा नहीं उत्तर देना चाहिए, कोई कहता है मैं बहुत दुखी हूं, ये व्यक्ति मुझे बहुत सता रहा है, उसको कह रहा है तुम अनार्य हो जैसी बातें करते हो, तुम कायर हो जैसी नपुंसक चीज बातें करते हो, क्योंकि वो अंदर छिपा हुआ अचेतन में, सबकॉन्शियस में ईगो है, इस ईगो पर आक्रमण हुआ है यहां पर। तो हम बात कर रहे थे ब्राह्मण आत्माओं के शोक का, दुख का क्या कारण है, क्या कारण है, सब तो कर रहे हैं, ज्ञान उन्हें सब पता है, मुरली की कोई वैसी पॉइंट नहीं है जो उनको पता नहीं है, कोई क्लास से परे है वो, क्या क्लास सुने, जिस क्लास में जो सुनाने वाले वो पहले ही पता है, क्लास आती अवस्था है, क्योंकि अचेतन में जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो संघर्ष है, उसको ठीक नहीं किया अभी तक, ज्ञान में निकल पड़े तलवार लेकर माया से युद्ध करने के लिए और बाहर के शत्रुओं से युद्ध कर रहे हैं, परंतु अंदर जो शत्रु बैठा था, एक जो कहीं बचपन से ही था, ज्ञान में आने के पहले से था, उसको अभी तक सामना किया ही नहीं उसका, अचेतन में उतरा ही नहीं आत्मी, उसके लिए गहरा मौन चाहिए, गहरा एकांत चाहिए, गहरा आत्मविश्लेषण चाहिए। कोई दूसरा साइको एनालिस्ट नहीं आएगा, पीछे खड़ा रहेगा और हम एक कोच पे लेटे रहेंगे, ऐसा पीछे से कोई नहीं आएगा और हम बोलते रहेंगे और हमारा वो इंटरप्रेट करेगा। ये तो बड़ी बीमारियां होती है तब, अब क्या पागल होने के लिए हम वेट कर रहे हैं, साइकोसिस होने के लिए? हमें अपना मनोविश्लेषण, सेल्फ साइको एनालिसिस करना पड़ेगा। और पहुंचे कैसे? सबसे मुश्किल काम तो है कि अचेतन तक पहुंचा ही नहीं जाता है। जो कुछ है वो चेतन है, ये तो स्वप्न में निकलता है, ये तो अज्ञात स्लीप ऑफ द टंग अपने आप निकल जाता है। स्लीप ऑफ द टंग कुछ नहीं होता है वास्तव में, वो है ना, इसलिए निकला है। गहरी नफरत समाई हुई है एक आत्मा के प्रति, परंतु सामाजिक, सिगमंड फ्राइड का एक ही है, सोशल जो है ना, ये उसके वजह से व्यक्ति सब सप्रेशन किया हुआ है। नहीं तो उसके अंदर अकेला अगर छोड़ दिया जाए तो पता नहीं क्या क्या करने लगेगा वो, क्योंकि अंदर में सब विकार ही भरे हुए, उसने तो कहा काम ही भरा हुआ है बस, इस सोसाइटी के वजह से सप्रेस्ड है और सारी जो बीमारियां उत्पन्न हो रही है इसी सप्रेस्ड, इस दमित काम वासना की वजह से। सीधा कह दिया, एक ही कारण है काम, क्योंकि यहां दबाया गया है, बचपन से ही दबाया गया है। परंतु इसकी थियोरी को उल्टा बहुत अलग तरीके से लिया गया, फिर लोगों ने समझा निकालो इस काम को बाहर, और सारे विश्व में काम फैल गया। ये सब उसी सदी की बातें हैं जिस सदी में कुछ सालों के बाद भगवान को अवतरित होना है, 1800s और 90s के, 21वीं सदी के, 20वीं सदी के पहले। भगवान 36 में आ रहे हैं, ये उसके पहले हो रहा है, 30-40 साल पहले, और सारे विश्व ने तुरंत स्वीकार कर लिया, हाँ ये बर्बर है, ऐसा ही है, इसी वजह से मनुष्य विक्षिप्त हो रहा है, पागल हो रहा है, क्योंकि दमन हो रहा है, सप्रेशन रिप्रेशन हो रहा है, इसके लिए निकालो इसको बाहर। परंतु सिगमंड फ्राइड ने अध्यात्म का अध्ययन नहीं किया था, उसकी जो सोच थी केवल फिलोसॉफी और शास्त्र की सोच थी, उसे अध्यात्म के गहरे अनुभव ही नहीं थे, तो कहां से वो समझ पाता? हाँ, उसने अचेतन की खोज कर ली, ये सबकॉन्शियस माइंड है ऊपर और ये सबकॉन्शियस माइंड है, पर वो खुद भी सबकॉन्शियस से उतना ही पीड़ित है जितना दूसरा व्यक्ति जिसे सबकॉन्शियस का कोई पता नहीं, क्योंकि उसको उस सबकॉन्शियस के परे जाने का कोई मार्ग ही नहीं था, उसने खाली समझ लिया कि ऐसा है, क्योंकि उसके पास आत्मा का कोई ज्ञान नहीं था, उसके पास संस्कारों का कोई ज्ञान नहीं था, उसे पता ही नहीं था आत्मा ऐसे जन्म ले रही है, इसके लिए उस तल तक वो नहीं पहुंच पाया। इसके लिए ज्ञान था परंतु प्रभावित वो भी हो रहा था, वो भी खुद डिप्रेशन में गया अपने जीवन में ही, उसको भी कुछ कुछ होने लगा था, जबकि उसे पहले ही सब कुछ पता था, ये सब नीचे से निकल रहा है, और उसने दूसरों को ठीक किया पर खुद को नहीं ठीक कर पाया, क्योंकि प्रभावित तो वो भी अचेतन से उतना ही हो रहा है। इसलिए ब्राह्मणों के शोक का एक कारण सप्रेस्ड इमोशंस, सप्रेस्ड वाइसेस, दमित भावनाएं, दमित विकार, सप्रेस्ड डिजायर्स, दमित इच्छाएं। कॉलेज में थे, नौकरी कर रहे थे, जॉब मिल रही थी बहुत अच्छी, जॉब छोड़ दी, ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार बन गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, अब देख रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, कितना अच्छा होता वो कर लिया होता तो, कितना अच्छा होता अगर थोड़े ज्यादा पैसे होते तो, कितना अच्छा होता वो डिग्री वापस से मिल जाए। यहां देख रहे, ये नए नए आ रहे और आगे जा रहे, हमारे बॉस बन रहे, ये सूक्ष्म कारण है, दमित इच्छा है, दमन हुआ इच्छाओं का, दमित बदले की भावना, दमित सेल्फ विक्टिमाइजेशन, सप्रेस्ड इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, सप्रेस्ड सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। हम हमेशा ही स्वयं को आगे करना चाहते थे, पर यहां आके एकदम पता चला निरंकारी बनना है। एकदम वो अहंकार तो एकदम चकनाचूर हो गया और एकदम अंदर से दब गया और वहां से बीच बीच में धक्के देते रहता है, कहीं अवसर मिल जाए अपने आप को महान बनाने का। पर बता नहीं सकते, यहां कहेंगे तो देखो कितना अहंकार है, क्योंकि हम योगी में भी आगे जाना चाहते। बड़ी दुविधा में फंस गई आत्मा, क्योंकि बचपन से स्वभाव अहंकार का था और यहां आते ही पहला चैप्टर पढ़ाया गया निरंकारी बनो, ब्रह्मा बाप समान बनो। सप्रेस्ड हो गया अहंकार, गया नहीं है, दिशा नहीं बदली है, सप्रेशन। ये शोक का कारण है, आंसुओं का कारण। क्यों आंसू निकल जाते हैं? और इच्छाएं अपूर्ण हुई है, चाहते थे कुछ और आगे चले जाए, परंतु देख रहे दूसरे आगे जा रहे, हम तो गए नहीं। ऐसा सोच ले तो बहुत अच्छा, पर ये सोच ही नहीं आ रहा है ना। बाहर से तो दिखाता है हर व्यक्ति ऐसा, ऊपर से कोई नहीं दिखाता कि मैं दुखी हूं। पहले मान तो ले कि मैं दुखी हूं, तो फिर सुख का मार्ग स्वतः ही निकलेगा। पहले मान तो ले, मैं ये आदतन मेरी आदत हो गई, आज बोला ऐसी आदतों को, गंदी आदतों को छोड़ दो। परंतु व्यक्ति मानता है क्या कि मैं आदी हो गया हूं, चाय के बिना मैं रह ही नहीं सकता, ये योगी के मुख से अच्छा लगता है? कभी नहीं। उसको अगर भोजन अच्छा न दिया जाए तो कितना दुखी हो जाता है, पर ऊपर से दिखाता है हम तो एकदम महान योगी है। पहले मानना, एक्सेप्टेंस। साइको एनालिसिस में पहले व्यक्ति को कहा जाता है कुछ भी बड़बड़ करो, जो तुमको कहता है कहो, किसको मारना है पीटो, जो करना है करो, सारा मन का बाहर निकालो। कैथारसिस, पर्गेशन होता है ना, पेट साफ, जिसको पर्गेटिव लैक्सेटिव दिया जाता है, उसको कहा जाता है लैक्सेट, सारा निकालो, जो मेंटल लैक्सेटिव, पर्गेशन करो पूरा, कैथारसिस सब बाहर निकालो। ये है तो घबरा जाएगा व्यक्ति, अरे बाप रे ये मैं हूं। इसके लिए उसको थोड़ा सा इंजेक्शन दे के थोड़ा सा उसका चेतन मन शांत किया जाता है और अचेतन से सारा कुछ निकाला जाता है, और फिर साइको एनालिसिस उसकी स्टडी करता है कि ये है। उसको किसी से प्यार था, उस लड़की ने, उसने उसको रिजेक्ट कर दिया, इसलिए अब ये सब हो रहा है। किसी से प्यार किया था पर उसने किसी और से शादी कर ली, अब इसलिए उसको ही मारना चाहता है। जब तक उसको मार ना देंगे चैन से, मेरी नहीं तो किसी और की नहीं, मेरा नहीं तो किसी और का भी नहीं, न जिएंगे ना जीने देंगे। तुमने मुझे छोड़ा, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। अब वो कहां प्यार था और कहां ऑब्सेशन और कहां पर जुनून बन जाता है, क्या था और क्या बन गया। रिजेक्शन जहां व्यक्ति को होता है जीवन में किसी के द्वारा, माँ बाप ने अच्छे से पालना नहीं की बचपन में, मां ने ठीक से पालना नहीं की, स्त्री संसार की सारी स्त्रियों के प्रति नफरत उत्पन्न हो जाती है बच्चों में। पिता ने ऐसा ऐसा व्यवहार किया, पिता ने पढ़ाया नहीं, पढ़ना चाहता था, पिता ने ध्यान नहीं दिया, मां ने ध्यान नहीं दिया, मां ने बड़ी बहन पर, छोटे बहन पर, भाई पर ज्यादा ध्यान दिया, मुझ पर ध्यान नहीं दिया। ये चाइल्डहुड ट्रॉमा, चाइल्डहुड अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, करना चाहते थे ये पर करने नहीं दिया गया, दबाया गया, और फिर अचानक यही आत्मा ज्ञान में आ जाती है और अचानक श्रीमत और अचानक ये सारी चीजें उसको पता चल जाती है, श्वेत वस्त्र बैच लग जाता है, अचानक मधुबन में भी आ जाती है, बाबा से मिलती है, मुरलियां पड़ती है। परंतु ये जो अनहील्ड वुंड है, घाव, उसका क्या, उसको तो कुछ किया ही नहीं, उसका सोचा भी नहीं। इसके लिए उस अचेतन तक पहुंचने के लिए ऐसे कड़े शब्दों की आवश्यकता है। कैसे कड़े शब्दों की? कृतत्वा कल्मषमिदं विषये क्लेम्ब्यं मा स्वगमः पार्थ शूद्र हृदय दौर्बल्यम्। हाँ, कड़े शब्दों की आवश्यकता है यहाँ पर। ये हृदय की दुर्बलता है। अपने आप को जस्टिफाई करना, रैशनलाइज करना, सही सिद्ध करना, स्टॉप करो। अगर आंसू यहाँ आ रहे हैं ना, अर्जुन को वो नहीं कह रहा है कि तुम्हारे आंसू में पहुंचता हूँ, बहुत अच्छा है, नहीं नहीं रो नहीं प्लीज, ये सब भाषा नहीं है। अरे तुम वीर हो, तुम योद्धे हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम पार्थ हो, क्या कर रहे हो ये? अनार्यों सी बातें करते हो, यह तुम्हें स्वर्ग में भी नहीं लेके जाएगा, कीर्ति को भी नहीं प्राप्त कराएगा तुम्हें, यह तो नपुंसकता है तुम्हारी, इंपोर्टेंसी है नामर्दी, तुमको यह उचित नहीं जान पड़ता। हे परंतप, तुम हो कौन? स्वमान दिल है, तुम स्वपरंतप हो, तुम पार्थ हो, क्षत्रिय हो, कुलीन हो। हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ये जो हो रहा है ना मन में हलचल, ये दुर्बलता है। कैसा पावरफुल शब्द है, क्या है ये? हृदय की दुर्बलता। इस हृदय की दुर्बलता को त्यज दे। हे अर्जुन, शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्वक्ता वोष्ठितम परंतप। त्वक्ता अर्थात त्यज दे, त्याग दे, छोड़ दे। ये जो दुर्बलता आई है, वीकनेस है ये हार्ट की, इसका परित्याग कर, तब खड़ा हो जाए युद्ध के लिए। कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं। हमें स्वयं को कहना है कि ये दुर्बलता कहां से? अच्छा, ये दुर्बलता जो आई है, ये जो शोक है, ये जो विलाप है, ये जो दर्द है, ये आंसू है, ये जो दुख है, क्या ये श्रीमत है? सबसे पहली बात, क्या ये भगवान कह रहा है ऐसे करो? क्या भगवान का ये आदेश है कि दुखी हो जाओ? भगवान तो क्या कहता है, संगम युग किस लिए? सुखों के लिए। झूले में झूलो, वहां ब्रह्मा बाबा खड़ा है, झूला लेके पालना, लोरी, वरदान, तेल, घी तेल से मालिश, घी पिलाने के लिए, एक्सरसाइज, अभ्यास, और हम दुखी, उदास, शोक युक्त। तो स्वयं का साइको एनालिसिस करना है, स्वयं के अवचेतन मन की स्टडी करनी है, और स्वयं को सारी हृदय दुर्बल्यम से मुक्त करना है, नपुंसकता से मुक्त करना है, शोक से मुक्त करना है, आंसुओं से क्या करना है, आंसुओं की टंकी को क्या कर देना है? योग की धूप कहां मिलेगी? पर धूप ही, सूरज निकल ही नहीं रहा है, पता नहीं 6 महीने हो गया है पर सूरज ही डूबा है, बादलों ने ढक लिया है, योग की धूप कहां मिलेगी? ऐसी स्थिति है। तो स्वयं को आज सारे दिन भर का ये काम है। सप्रेस्ड डिजायर्स क्या है, सप्रेस्ड वाइसेस विकार कौन कौन से है, सप्रेस्ड इमोशंस क्या क्या है, सप्रेस्ड एम्बिशंस क्या क्या थी मेरी, उस पर काम करना। किस किस व्यक्ति के प्रति सप्रेस्ड हेट्रेट है, घृणा है, नफरत है, गिराना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हैं, कौन है ऐसा है? ऊपर से तो हम कहते हैं मैं विश्व कल्याण कर रही हूं, नारे लगा रहे विश्व कल्याण करिए, परंतु अंदर से कुछ और चाहता है व्यक्ति। उसको देखा गिरते हुए तो अज्ञात से खुशी होती है, किसी का अपमान हुआ, किसी पर एकदम से पीड़ा आ गई, संकट आ गया। एक डॉक्टर थे कहीं पर किसी हॉस्पिटल में, उसके पास एक बहन आई, नहीं एक अपने एक डॉक्टर थी, उसकी युगल भी डॉक्टर थी, उसने एक किसी के पास भेजा दांत के डॉक्टर के पास, तो वो गड़बड़ कर दिया, वो दांत के डॉक्टर ने कुछ गड़बड़ कर दिया दांत का, तो उसने उसके खिलाफ कंप्लेंट कर दी और वो दांत के डॉक्टर को निकलना पड़ा। बाद में उसने ऐसा हुआ, ये जो पहला डॉक्टर था उसकी पत्नी को पैरालिसिस हो गया, तो पहले जो डेंटल वाला डॉक्टर था उसने कहा ना अच्छा ही हुआ, देखा मेरे साथ ऐसा किया था ना, ऐसा ही होना चाहिए था। यहां सारे ज्ञानी है, नाम नहीं बताऊंगा, ये सब ज्ञानियों की बातें चल रही है, अज्ञानी नहीं, ज्ञानी बटिया वगैरह कराने वाले इसलिए अपने अचेतन मन को ढूंढो, रैंसैक्ट द अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, और स्वयं को सामना करो। ये है, पहले तो एक्सेप्ट करो, फिर उससे मुक्त हो जाओ। तो ये आज का काम है। ओम शांति।